आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रेल ओवरब्रिज और फ्लाईओवर का किया लोकार्पण। कहा, डबल इंजन की सरकार में नौजवानों को मिल रहे हैं रोजगार के नए अवसर। दावोस में हुए 56वें विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में प्रदेश सरकार ने किए 3,00,000 करोड़ रुपए के करार। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी कर रही है निवेशकों को आकर्षित। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए दिशा निर्देशों के प्रति केंद्र सरकार ने किया आश्वस्त। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, संविधान के दायरे में ही की जाएंगी सभी कार्रवाई। और आज से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में रेल ओवरब्रिज और 4-लेन मार्ग पर फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर सहित पूर्वांचल में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित वातावरण और बेहतर कनेक्टिविटी के चलते प्रदेश में निवेश का माहौल बना है।
डबल इंजन सरकार ने नौजवानों को सरकारी नौकरी भी दी है और निवेश का बेहतरीन वातावरण बना करके प्रदेश में निवेश की एक नई बहार बहाई है। निवेश आता तब है जब स्केल को स्किलिंग में बदल करके नौजवानों को उन्हीं के गांव में, उन्हीं के जनपद में, उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के प्रदेश में नौकरी की सुविधा प्राप्त होती है। और हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में आया हुआ 45,00,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव, उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी का दस्तावेज है।
स्विट्जरलैंड के दावोस में संपन्न हुए 56वें विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन में प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के नेतृत्व में राज्य सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने 119 रणनीतिक बैठकों में हिस्सा लिया। लखनऊ में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में श्री खन्ना ने बताया कि इन बैठकों में प्रदेश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों के साथ 3,00,000 करोड़ के 31 करार किए। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिदृश्य में उत्तर प्रदेश को लेकर लोगों का दृष्टिकोण सकारात्मक है। यहाँ की कनेक्टिविटी, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षित माहौल के चलते ये निवेशकों को आकर्षित कर रहा है।
3,00,000 करोड़ रुपए के MOU हुए और उसमें सबसे बड़ा MOU जो हुआ है वो AM ग्रीन का है, नीदरलैंड की कंपनी है जिसने AI बेस्ड 1 GW डाटा सेंटर का एक MOU किया है। ये लगभग 2,07,00,000 का है, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
श्री खन्ना ने बताया कि जिन क्षेत्रों में समझौते किए गए उनमें मुख्य रूप से डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, रक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स आदि शामिल हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में कल से 2 दिवसीय AI मंथन कार्यशाला शुरू हुई। इस कार्यशाला का विषय उच्च और तकनीकी शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौतियां और अवसर है। कार्यशाला में समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुल सचिव सहित करीब 290 शिक्षाविद सम्मिलित हो रहे हैं। इस अवसर पर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति विनय कुमार पाठक ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में AI का उपयोग कर शिक्षण को कई गुना बेहतर बनाया जा सकता है।
तो आज जो अपॉर्चुनिटीज है हम लोग के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, तो इस पर ये AI मंथन, तो पहला तो हर बच्चे को अब हम इस टेक्नोलॉजी से उसके हिसाब से, हम लोग बहुत सारे प्रोफेसर बात करते रहते कि लर्निंग ऑन इट्स ओन पेस, तो आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम हर बच्चे को उसके हिसाब से पढ़ा सकते हैं, उसके हिसाब से उसका चैटबॉट बना सकते हैं, उसके हिसाब से उसको ट्यूटर्स बना सकते हैं।
इससे पहले राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों के AI स्टार्टअप्स का अवलोकन किया। पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित होने वाली विभूतियों में प्रदेश के 11 लोग शामिल हैं। इनमें N. राजम को पद्म विभूषण सम्मान जबकि अन्य 10 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। लखनऊ के प्रसिद्ध रंगकर्मी, वैज्ञानिक और फिल्म अभिनेता डॉक्टर अनिल रस्तोगी को कला एवं अभिनय के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। श्री रस्तोगी ने कहा कि पद्म पुरस्कार के लिए चुना जाना उनके लिए बहुत सम्मान की बात है।
ये पद्म अवार्ड जो है, जाहिर है कि जो मिला है अगर मुझे, तो मैं तो इसको बड़ा सम्मान मानता हूँ और इसका क्रेडिट मैं देता हूँ अपने कलाकारों को जिनके साथ मैंने काम किया है, अपने गुरुओं को जिनसे मैंने सीखा है, और सबसे बड़ा क्रेडिट है मेरी CDRI को, क्योंकि CDRI में रह करके मैंने साइंस और थिएटर ऑलमोस्ट मैंने पैरेलल किया है दोनों। तो अगर मैं CDRI में नहीं होता तो शायद मैं आज न इतना थिएटर कर रहा होता, न फिल्में कर रहा होता, न सीरियल कर रहा होता।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए दिशा निर्देश शिक्षा परिसरों में जाति आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए हैं और इनका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सभी कार्रवाई संविधान के दायरे में ही की जाएगी।
डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें UGC हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। कुछ भी व्यवस्था हो संविधान की परिधि के अंदर होगा और ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।
संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, ये 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र से पहले कल नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बजट सत्र के पहले भाग में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा।
राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा, उस पर चर्चा होगी, फिर उसके बाद बजट पे दोनों सदन में चर्चा होगा। हम लोगों ने सारा मेंबर्स को रिक्वेस्ट किया है कि सब पार्टी सहयोग करें और हमारे संसद को सुचारू रूप से चलाने में योगदान करें।
केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों का अंतिम चरण कल नई दिल्ली में हलवा समारोह के साथ शुरू हुआ। समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मंत्रालय के सभी विभागों के सचिव और बजट तैयारियों में शामिल अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कल सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने SIR प्रक्रिया के दौरान दावे और आपत्तियों का निस्तारण, नोटिस जारी किए जाने तथा इस पर हो रही सुनवाई की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि SIR के दूसरे चरण में 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। 27 फरवरी तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा, जबकि 6 मार्च 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से SIR के कार्य में पूर्ण सहयोग करने और अपने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से अधिक फॉर्म 6 भरवाए जाने के लिए भी आह्वान किया। उच्चतम न्यायालय ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एसिड हमले के मामलों की संख्या और अदालतों में उनकी स्थिति सहित कई तरह की जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने पीड़ितों की सहायता के लिए पुनर्वास उपायों की जानकारी देने के भी निर्देश दिए हैं। पीलीभीत और शामली सहित प्रदेश के पश्चिमी जिलों में कल तेज हवा के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। वहीं अमरोहा और गाजियाबाद में बारिश के साथ ओले गिरने से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी जिलों में आज भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने तथा वर्षा की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि में कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रेल ओवरब्रिज और फ्लाई ओवर का किया लोकार्पण। कहा, डबल इंजन की सरकार में नौजवानों को मिल रहे हैं रोजगार के नए अवसर। दावोस में हुए 56वें विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में प्रदेश सरकार ने किए 3,00,000 करोड़ रुपए के करार। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी कर रही है निवेशकों को आकर्षित। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए दिशा निर्देशों के प्रति केंद्र सरकार ने किया आश्वस्त। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, संविधान के दायरे में ही की जाएंगी सभी कार्रवाई। और आज से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।